आउज बिल्लाह इब्न शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज लेक्चर नंबर 29 है जी, 29th लेक्चर है हजूर मुर्शिद करीम का, इरशाद फरमाया हुआ और लिखा हुआ तहरीर करता। ये मैं अर्ज कर चुका हूँ कि ये मतलब कि क्लासेस होती थी, वंस अ वीक होती थी और रमज़ान में ये डेली बेसिस पे होती थी। फिर उन क्लासेस में जो भी उन लेक्चर्स में हुजूर मुर्शिद करीम ने मतलब कि काफ़ी सालों चली थी क्लास, तो उसमें फिर इसकी समरी की गई, इसको समअप किया गया। तो इसलिए वो जब समअप किया गया तो बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो मुख्तसर अल्फाज में यहाँ पे हमें तहरीर की सूरत में नज़र आती हैं। तो उनको समझने के लिए जहन को उतनी गहराई में उतारना ज़रूरी है जिस गहराई में कि वो मुतकाजी है, यानी कि जितना ज़रूरी है जहन को इसमें उतारना। एक गहरी रोशनी के गहरे समंदर में अगर आप सतही सर्फिंग करेंगे तो सिर्फ सर्फिंग ही होगी, अंदर से कोई गौहर मोती नहीं निकलेंगे। यस या नो? तो चलें पढ़ना शुरू करते हैं। नजर का कानून, कायनात निगाह या नजर है। पहला ही जुमला, पूरी कायनात पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया। पूरी कायनात निगाह या नजर है, यानी अगर नजर आ रही है तो कायनात है, और अगर कायनात है तो नजर आ रही है तो क्या हुआ? नजर हुई ना, हमें तो नजर सिर्फ लगती है। यहाँ पे पूरी कायनात निगाह या नजर है। जरा इस जुमले पे रुक जाइए, इसी को तकरार होने दें जहन में। कायनात एक निगाह या नजर है, कायनात निगाह या नजर है। जब तक ये बात आपके जहन में, देखें कायनात और नजर को आप को रिलेट नहीं करेंगे, ना कायनात समझ में आएगी ना नजर समझ में आएगी। और अगर आपके जहन में ये बात बैठ गई कि कायनात असल में कुछ भी नहीं है, नजर है यानी निगाह है। अब आगे पढ़ें, जब तक कायनात के अफराद को नजर मुंतकिल नहीं हुई उस वक्त तक कायनात आलम तहय्यर में थी। आलम तहय्यर आलम हैरत में थी। यहाँ पे एक लफ्ज और सुन लीजिए, अल्लाह तबारक व ताला का जाती नाम अल्लाह है। अल्लाह के मानी जो बताए जाते हैं वो है तहय्यर में मुब्तला कर देने वाला, मुतहय्यर कर देने वाली जात का नाम है अल्लाह। तो अल्लाह जो है उसका लुग़वी, जहां आप हैरत में गए वही तो अल्लाह है। अब आप देखें कि अगर आपकी अकल हैरान हो रही है किसी बात को लेकर तो समझें कि अल्लाह के करीब है। अब कायनात निगाह या नजर है, और अब आगे दलील क्या दी जा रही है, जब तक कायनात के अफराद को नजर मुंतकिल नहीं हुई उस वक्त तक कायनात आलम तहय्यर में। आलम तहय्यर एक हैरत का आलम था। हैरत में क्या होता है? सवाल ही सवाल होते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्यों हूँ, गौर करें जरा। तो उस जब तक नजर मुंतकिल नहीं हुई थी उस वक्त तक कायनात आलम तहय्यर में थी। जब अल्लाह ताला ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, तो कायनात में जितनी भी अरवाह थी उन्होंने उस आवाज की तरफ देखा। देखा यानी आवाज आई, वो समात बनी, फिर वो फहम बनी, फिर उसके बाद तजस्सुस बेदार हुआ, मुतहरिक हुआ और निगाह हरकत में आ गई। तो आवाज की तरफ देखा, यानी सिमतों का भी पता चल गया कि आवाज किधर से आई। अब गौर करें, आपको कोई आवाज देता है तो आपका सर उस तरफ मुड़ेगा जहां से आवाज आ रही होगी। तो ये जो सिमतों का तायुन आवाज के साथ है और फिर निगाह उसको देखती है, जरा इस मंजर को जहन में क्लियर कर लें। यही मंजर अरवाह के साथ हुआ, जो यहां फिजिकल वर्ल्ड में जिस कानून का तजर्बा रखते हैं, जो बरतते हैं, जो हमारा, क्योंकि कवानीन तो असली हैं, वो काम जो आलम अरवाह में हुआ वही तो यहां आलम मजाहिर में होगा, वही कानून कि आवाज से नजर मुंतकिल होती है। तो क्या फरमाया, उन्होंने आवाज की तरफ देखा। अब जाहिर है आवाज की तरफ ही देखा ना, क्योंकि आवाज तो नहीं, आवाज की कोई शक्ल तो नहीं होती, लेकिन आप उस शक्ल की तलाश में उस तरफ देखते हैं। तो उन्हें अल्लाह का इदराक हासिल हो गया। गौर करें क्या लफ्ज लिखा है, जब आवाज की तरफ देखा। गौर करें निगाह क्या देखती है, आवाज की लहरों को देखती है, आवाज की लहरों को देखती है। हमारा आपका जहन कभी इस गहराई में नहीं उतरा, लिहाजा हमें इन चीजों का शऊर ही नहीं होता। अब ये बात देखें किस तरीके से उन्होंने बता दी। उन्होंने जब अल्लाह ने अलस्तो बे रब्बिकुम पूछा, तो उन्होंने उस आवाज की तरफ देखा, तो उन्हें अल्लाह का इदराक हासिल हो गया। ये नहीं लिखा कि अल्लाह नजर आ गया। गौर करें, यानी जो चीज नजर में आ रही है वो कायनात है। पहला जुमला, जो चीज आपकी निगाह की गिरफ्त में आ गई वो कायनात है। और जब इस नजर को, इस कायनात को बनाने वाले का तरफ आप मतवज्जो हुए, तो नजर ही काम करेगी लेकिन वो इदराक बनेगी। ये बारीकियां हैं, इनकी तरफ तवज्जो देना इस कदर जरूरी था कि ये अगर हम इस तरह मतवज्जो नहीं होंगे तो बात हमें जहन नशीन नहीं हो सकेगी। भले हम सर धुनते रहें कि जी वाह क्या बात लिखी है। ये जब आपको नजर का कानून समझ आ जाएगा तो आपको मुशाहिदात भी होना शुरू हो जाएंगे, या कम से कम मुशाहिदात का इल्म हासिल होना शुरू हो जाएगा। अगला जुमला देखें क्या कहा, उन्होंने उस आवाज की तरफ देखा तो उन्हें अल्लाह का इदराक हासिल हो गया। और ये इदराक ही नजर है। गौर करें, अब ये इदराक ही नजर है, और यही वो नजर है जो पहला बोध है। अब ये नजर की दर्जा बंदी है, और ये पहली दर्जा बंदी, ये इदराक जो है। इसके बाद कायनात के तीन दायरे मजीद बनते हैं, और वो है मकान। यानी ये जो पहला बोध है ये जमानियत है, और जिनके नाम बितरतीब, बोध नंबर एक, बोध नंबर दो, बोध नंबर तीन और बोध नंबर चार हैं। पहला बोध नजर, इसी को शहूद कहते हैं। दूसरा बोध नजारा, इसी को मुशाहिदा कहते हैं। तीसरा बोध नाजर, यानी देखने वाला, शाहिद यानी मुशाहिदा करने वाला। और चौथा बोध मंजूर, जो नजर आ रहा हो। और उधर इसी का चौथे बोध का नाम है शहूद, मशहूद, सॉरी ये मैं ये लिखा भी मशहूद। शहूद पहला है और चौथा मशहूद, मीम का मैं इसमें। अब ये चारों बोध कौन से भला, ये शहूद, मुशाहिदा, शाहिद और मशहूद हैं। इनके बारे में गालिब का एक शेर सुन लें, असले शहूद व शाहिद व मशहूद एक हैं, असले शहूद व शाहिद व मशहूद एक हैं, हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में। अब गौर करें, ये हमारी ये क्या कहते हैं तसव्वुफ की इस टर्मिनोलॉजी पे मिर्जा गालिब ने ये शेर इरशाद फरमाया। उसने मजाक उड़ाया असल में कि जब इन सारों की असल एक है तो कहता है हैरान हूं फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में। फिर मुशाहिदा किसका हो रहा है अगर नजर भी एक ही है, वही शाहिद है वही मशहूद है, तो ये मुशाहिदा कौन कर रहा है किसका कर रहा है? और ये वैलिड क्वेश्चन है कि अगर नजर और नाजर और मंजूर आपस में रिलेटेड है तो नजारा कौन कर रहा है? तो भाई नजारा मंजूर का हो रहा है, कर कौन रहा है? नाजर कर रहा है। और वो जो उसके दरमियान फंक्शन करने वाली एजेंसी है, फंक्शनिंग एजेंसी जो है वो नजर है। इसी तरह ये शहूद इसी नजर को यूं समझें कि ये नजर नजारा वगैरह जो है ये अगर उसके ये सारे वैसे सारे अल्फाज अरबी के हैं लेकिन इनकी दो कैटेगरीज कर दी गई हैं। अब ये चारों बोध यानी शहूद मुशाहिदा शाहिद और मशहूद हैं। अब जरा सुनते जाइए कि शहूद नहरे तस्वीद कहते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये है नहरे तस्वीद कायनात की साख्त में असल बुनियाद है, इसमें कभी कोई तगैयर वाकया नहीं हुआ और ना होगा क्योंकि ये लामुतगैयर है, क्योंकि इसकी कोई हदें नहीं है। इसी हकीकत पर तीनों मकानियतों की इमारत कायम है और फिर इस ही हकीकत पर यानी जिसको नजर कहा, जिसको नहरे तस्वीद कहा, जिसको शहूद कहा, जिसको आगे जितने भी नाम है जमान है इसी को रास्ता कहा है, ये सारी चीजें हकीकत देखिए। अब इसको समझ लें, अब देखें क्या फरमा रहे हैं। जमान रास्ता है और बाकी तीन बोध मकानियत यानी बाकी तीन दर्जे जो हैं, नजर जो है ये जमानियत है और बाकी तीनों बोध जो हैं ये मकानियतें हैं। अब रास्ता एक है, अब सफर करने वाले अफराद अलग अलग हैं। कायनात की असल बुनियाद के बाद पहली मकानियत तजरीद है जो मुशाहिदा या नजारे की नौइयत में अपना वजूद रखती है। असल बुनियाद यानी नहरे तस्वीद के बाद पहली मकानियत नहरे तजरीद है। ये लफ्ज मुजर्रद सुना होगा, जर्द कहते हैं मुफरत चीज को, अकेली चीज को कहते हैं ना, ये इसने शादी नहीं की ये सारी जिंदगी, इसने हालत तजरीद में या मुजर्रद हालत में गुजार दी, इसका जोड़ा नहीं है। तो ये वो दर्जा है, पहली मकानियत तजरीद है। ये लफ्ज की सिर्फ असल बता रहा हूं, जो मुशाहिदा या नजारे की नौइयत में अपना वजूद रखती है, यानी कि ये गालिब साहब जिस पे हैरान है कि मुशाहिदा है फिर किस हिसाब में, वो ये बता रहे हैं कि ये पहली मकानियत का नाम है। फिर दूसरी मकानियत नहरे तशहीद है। ये नहरे तशहीद से लफ्ज शाहिद देखें या नाजर की हैसियत रखती है, यानी देखने का काम जो कर रहा है वो असल में नहरे तशहीद से मुस्तफीद हो रहा है या उसकी लहरों के जेरे असर ये देखने का अमल सर अंजाम दे रहा है। अब तीसरी मकानियत नहरे तजहीर है जो मशहूद या मंजूर कहलाती है और यही वो मकानियत है जो रोशनी का एक गहरा समंदर है, ये रोशनी का एक गहरा समंदर है, और यही वो मकानियत है जिसको आईने का कायम मुकाम कहा गया। यानी ये नहरें तज़हीर जो है ये वो आईना है जो के ऊपर से आने वाले इदराक की लहर को अपने अंदर जज्ब करके वापस पलटाता है। अब इसको दोबारा सुने, मजीद सुने, सॉरी दोबारा नहीं, बात यही है लेकिन अब इसको दोबारा फरमाया कि नहरे तस्वीर जमान है और ये रास्ता है। नहरे तजरीद मकानियत नंबर एक है, इसी को नजारा कहते हैं। नहरे तशीद मकानियत नंबर दो है, इसी को नाजर कहते हैं। अब नहरे तजहीर जो है ये मकानियत नंबर तीन है, ये रोशनी है और ये आईने के कायम मुकाम। ठीक, दोबारा सुने के नहरे तस्वीर कायनात की असल है, नहरे तजरीद ये असल बुनियाद के बाद की पहली मकानियत है, और नहरे तशहीद ये कायनात की असल यानी जमान के बाद दूसरी मकानियत है। अब नहरे तजहीर जो है ये कायनात की असल यानी टाइम के बाद फिर तीसरी मकानियत है। फिर दोबारा सुने कि तस्वीद जो है ये खिलाए नूर है, वो जो पीछे हमने पढ़ा था, ये तस्वीद है, ला मकान है, जमान है, वक्त है, या इसी को आप अल्लाह का जहन करें। अब गौर करें, अब आप अल्लाह का जहन मान लें तो आज की कॉमन टर्मिनोलॉजी में हम बजाय इसके कि ये पेचीदा टर्मिनोलॉजी यूज करें, हम कहते हैं भाई अल्लाह के जहन में एक बात है, तो गोया हम किसको रेफर कर रहे हैं, नहरे तस्वीर। ठीक है, अब यही तजरीद तशहीद और तजहीर ये तीनों दायरे हैं, क्योंकि ये ऐसे जैसे किसी अंधेरी जगह में आप मोमबत्ती यानी शमा जलाएं, क्या होता है रोशनी चारों तरफ फैलती है, तो वो एक ग्लोब सा बनता है। यहां पे याद रखें, इस पूरी किताब में जहां दायरा आया वहां पे लव ग्लोब को इमेजिन करें। दायरा तो दो मतलब टू डायमेंशनल होता है ना, कागज पे बना हुआ एक दायरा हमारे जहन में आएगा तो आगे मकसद नहीं पूरा होता, क्योंकि हमें कागज के बने हुए दायरे को आप बाहर नहीं ढूंढ सकते। तो अगर आप इसे ग्लोब मान लें कि रोशनी का से फैला हुआ एक बैलून है जिसके अंदर है, तो फिर समझ आ जाए, आनी शुरू हो जाएगी। तो ये क्या कहा कि ये तीनों दायरे यानी असल में चार दायरे हैं, यानी चार ग्लोब हैं, ग्लोब के अंदर ग्लोब के अंदर ग्लोब। ठीक है, बड़ा ग्लोब, फिर उसके अंदर छोटा, फिर उससे अंदर छोटा, फिर उससे अंदर छोटा, उससे अंदर छोटा, वो जितना छोटा है वो उतना ही बड़ा है। जब हम ये तीनों दायरे कायनात में मकां की हैसियत रखते हैं, तो जब हम लफ्ज रूहानियत कहते हैं तो इसका मफहूम यह है कि हम ऐसी तर्ज फिक्र का तज़करा कर रहे हैं जो तर्ज फिक्र दुनिया में राइज तमाम अलूम से अलग और मुख्तलिफ है। अलग भी है, इसका उनके साथ कोई मुकाबला नहीं, और मुख्तलिफ भी है। यानी रूहानियत जो है ये दुनियावी अलूम से हटकर है, एक चीज तिबियात नफ्सियात और मा बादुन नफ्सियात का इल्म, यानी ये तीनों अलूम का मजमुआ हमें रोशनी फराहम करता है। अब यहां पे रोशनी से क्या मुराद है, वही हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा है ना कि कायनात में जो कुछ मौजूद है उसे हमारी आंख देख रही है, नहीं जो कुछ मौजूद है उसे हमारी आंख देख रही है। अब आंख किस दर्जे पे देख रही है, उसे फिजिकल फॉर्म में देख रही है, तो ये तिबियात का दायरा। आप उसे जहन की सतह पे देख रहे हैं, अब आप इमेजिन करते हैं कि यहां अपने घरों में बैठे हुए आप इमेजिन कर रहे हैं कि कराची में मुराकबा हॉल है, तो ये जो कराची में मुराकबा हॉल का तस्वीर गुजरी ये आपने कौन सी नजर से देखा, तो ज़ाहिर है वो ज़हन की नज़र से देखा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर लें और उसे रूह की नज़र मान लें, यानी उससे ऊपर के दर्जे पे, तो क्या आपकी नज़र पूरी कायनात को नहीं देख सकेगी? ये है राज। तिबियात, नफ्सियात और मा बादुन नफ्सियात यानी पैरासाइकोलॉजी, तिबियात फिजिक्स, नफ्सियात साइकोलॉजी और मा बादुन नफ्सियात पैरासाइकोलॉजी का इल्म हमें रोशनी फराहम करता है कि कायनात में जो कुछ मौजूद है उसे हमारी आंख देख रही है। इसके बरक्स, ठीक है, रूहानी तर्ज़े फिक्र हमें बताती है, इसके बरक्स, यानी ये बात आपके आम जनरल नॉलेज में यहां तक ठीक है, लेकिन रूहानी तर्ज़े फिक्र का हामिल बंदा क्या कहता है कि किसी चीज को देखने में हमारी मादी आंख वास्ता बन रही है। जब हम पहाड़ को देखते हैं तो दर हकीकत हम पहाड़ को नहीं देखते, पहाड़ के देखने को देखते हैं, यानी पहाड़ हमें देखता है और पहाड़ अपने देखने के जाविये को हमें मुंतकिल कर देता है और हम पहाड़ के देखने को देख लेते हैं। तो पीछे जुमला गुजरा था ना कि जब हम किसी शय को देखते हैं तो शय की फहम, उस शय की अपनी फहम जो है वो हमारे अंदर मुंतकिल हो रही होती है। ये है रूहानी तर्ज़े फिक्र। जाहिर है ये बिल्कुल यूनिक बात है, ये बात जो है आपके असरी अलूम में किसी की समझ भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो तो अपनी साइंस में या अपने वो बने हुए जहन से सोच रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जहन का पहले पोचा लगा के उसकी सफाई करते हैं, वरना ये आपने बातें पढ़ ली, पढ़ी हुई थी, इंशाल्लाह आइंदा भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये समझ में नहीं उतर सकती जब तक कि आप ये तिबियात नफ्सियात और माबादुन नफ्सियात वगैरह से इसको साइड पे रख दें, उनकी सारी बातों को और देखें क्या फरमा रहे हैं, इस जुमले को अंडरलाइन कर लें, मिसाल देखें कि जब हम पहाड़ को देखते हैं तो दर हकीकत यानी हकीकत में हम पहाड़ को नहीं देखते, पहाड़ के देखने को देखते। अब ये इतनी पेचीदा वो बन गई बात, मैंने जितनों से बात की है कोई बंदा इसका तसल्ली बख्श वजाहत नहीं कर सकता, शर्मा जाते हैं। हालांकि साफ लिखा हुआ है कि जब हम किसी शय को देखते हैं तो शय की फहम, ये पीछे जुमला गुजरा है ना कल परसों, कि वो हमारे अंदर मुंतकिल होती है, उस शय की अपनी फहम, और उससे पहले बताया कि हमारा नुक्ता जात उसमें ढल जाता है। अब देखिए इन तीनों बातों को यहां पे मिलाकर पढ़ें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पहाड़ के देखने को देखते यानी पहाड़ हमें देखता है और पहाड़ अपने देखने के जाविये को हमें मुंतकिल कर देता है, तो हम पहाड़ के देखने को देख लेते हैं। अब ये है बराह रास्त नजर, और यही कायनाती शऊर है। ये बराह रास्त नजर क्या है? ये कायनाती शऊर है। जिस बंदे को गोया ये नजर हासिल हो गई, यानी कि उसको ये बात उसके जहन में बैठ जाए, रासख हो जाए कि भाई मैं कि जिस भी चीज को देख रहा हूं ये चीज अपना तारुफ करवा रही है, ये चीज मेरी फहम में अपनी फहम उतार रही है, मेरी जात का नुक्ता इसमें ढल रहा है, इसकी कितनी एक्सरसाइज और कितनी मश्क चाहिए वो आपको अंदाजा होगा, क्योंकि ये बात हो रही है, यही नजर कायनाती शऊर है। यही नजर कायनाती शऊर, कौन सी? बराह रास्त नजर। یعنی براہ راست نظریے میں تو پہاڑ کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہوں، میں تو بکری کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہوں، آپ کسی بھی انسان کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں میں زید کو دیکھ رہا ہوں، تو زید کو نہیں دیکھ رہے آپ، زید کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں، زید آپ کو جو دکھا رہا ہے آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح ایک انسان پہاڑ کو پہاڑ دیکھتا ہے، اسی طرح انسان کے علاوہ تمام مخلوقات، چرندے، پرندے اور درندے اور دوسری مخلوق پہاڑ کو پہاڑ دیکھتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ انسان نے پہاڑ کو پہاڑ دیکھا اور شیر نے پہاڑ کو سمندر دیکھا۔ یعنی یہ یونیورسلٹی ہے، اس میں ہر چیز خود کو یونیورسلی اویلیبل کیے ہوئے، یعنی سب ایک چیز کو ایک ہی طرح دیکھتے ہیں، پانی کو سب پانی دیکھتے ہیں، پہاڑ کو سب پہاڑ دیکھتے ہیں۔ براہ راست نظر کا یہ کردار کائنات کے ہر ذرے میں یکساں طور پر برسر عمل ہے۔ جس طرح انسان لوہے کو سخت محسوس کرتا ہے، اسی طرح چیونٹی اور ہاتھی بھی لوہے کو سخت محسوس کرتے ہیں۔ براہ راست طرز نگاہ کائنات میں ہر فرد کو حاصل ہے۔ آپ کو شبہ رہ گیا؟ ہر فرد کو حاصل ہے، اور یہ اشتراک اس لیے کہ انسان سمندر کو نہیں دیکھتا، سمندر انسان کو دیکھتا ہے، اور انسان سمندر کے دیکھنے کو دیکھتا ہے، اور کائنات میں پھیلے ہوئے تمام مناظر اسی قانون کے پابند ہیں۔ جس طرح آدمی چاند کی طرف نظر اٹھا کر چاند کو دیکھتا ہے، اسی طرح چکور بھی چاند کو دیکھتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی پانی پی کر آنتوں کی سیرابی کرتا ہے، اسی طرح چوپائے پانی پی کر اپنی جسمانی نشو نما کرتے ہیں۔ اسی طرح درخت کی جڑیں پانی کو پانی سمجھ کر پانی سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ جس طرح انسان اور دوسرے جانور پانی سے نشو نما پاتے ہیں، اسی طرح پھول پانی پی کر اپنی نشو نما کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ کائناتی شعور کا کردار۔ جس طرح ایک سانپ دودھ کو دودھ سمجھ کر پیتا ہے، اسی طرح بکری بھی دودھ کو دودھ سمجھ کر پیتی ہے۔ یہ ایک مشترک نگاہ ہے جو ساری کائنات اور کائنات کے تمام افراد میں یکساں طور پر عمل پذیر ہے، یعنی عمل کر رہی ہے، کام کر رہی ہے۔ اب نظر کے اس قانون میں کہیں اختلاف نہیں ہے۔ براہ راست طرز نگاہ، یعنی ڈائریکٹ سائٹنگ، براہ راست طرز نگاہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس صفت پر کائنات کی نظر متحرک ہے۔ اب یہ کائناتی نظر اصل میں اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا وصف ہے۔ اللہ اس نظر سے سب کو دیکھتا ہے، کیونکہ ہر چیز خود کو ڈسپلے کر کے اپنا، یعنی ڈسپلے جو ہے یہ اپنے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے خود کو پریزنٹ کر رہی ہے بیفور اللہ رب کریم۔ اس لیے وہ سب جو بھی جیسے بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو تغیر سے آزاد کر کے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ صفت ہے، براہ راست طرز نگاہ اللہ کی وہ صفت ہے جس صفت پر کائنات کی نظر متحرک ہے، اور یہ نظر کا یہ زاویہ ہر ذرے میں موجود ہونے کے باوجود، ہر ذرے میں موجود ہونے کے باوجود غیر متغیر ہے۔ یعنی اس کو سمجھنا ہے، وہ جو پیچھے چیپٹر پورا پہلے ہمارے ذہن میں بٹھایا کہ غیر متغیر ہوتا کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کلیئر کیا، اب یہاں پہ یہ بتایا کہ ہر ذرے میں ایک ہی نظر کام کر رہی ہے، یعنی ہر ذرہ اس قانون کا پابند ہے۔ غیر متغیر اس حقیقت کو کہا جاتا ہے جس میں تبدیلی और तातुल ना हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान को इल्म सिखाया जो वो नहीं जानता था, यानी अल्लाह ने इंसान के लाशऊर में इल्म जखीरा कर दिया है। ये है इस आयत का असल मफहूम। अल्लमल आदम सॉरी अल्लमल इंसान मालम यालम, इंसान को सिखाया जो वो ना जानता था। अब इसका मतलब क्या बताया बने, यानी अल्लाह ने इंसान के लाशऊर में इल्म जखीरा कर दिया। अब आप कहते हैं जी वो इल्म दिया तो कहाँ दिया, कब दिया, का कौन से स्कूल में पढ़ा। अल्लाह ताला ने इंसान को वो इल्म सिखा दिया है, यानी उसके लाशऊर में जखीरा है, जिस इल्म से इंसान के अलावा कायनात में कोई दूसरा फर्द वाकिफ नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं पस जिस वक्त के दुरुस्त करूं और फूकूं उसके बीच अपनी रूह में से, पस गिर पड़ो वास्ते उसके सजदा करते हुए। सूरह साद आयत नंबर 72। फूकूं उसके बीच अपनी रूह में से, अक्सर ये मैं कहता हूं तो कि भाई ये मिनर रूही कहा गया, मिनर रूही कहा गया, तो वो कहते हैं जी आप अपने पास से बोलते हैं सारे तर्जुमे। अब ये देख लीजिए क्या हजूर मुर्शिद करीम ने पहले लिखा है या मैं पहले बोल रहा हूँ। नहीं, उन्होंने पहले लिखा है भाई, मैं तो नहीं की बात को, मेरी शहादत ये है कि मैंने वो पिक की है और उसी की तकरार करता हूँ कि भाई नहीं, रूह में से कुछ फूंका है, फूकूं उसके बीच अपनी रूह में से। वो इल्म है जो इल्म अल्लाह ताला ने आदम के अलावा कायनात में किसी मखलूक को नहीं सिखाया, यानी ये फूंकना जो है अपनी रूह में से वो इल्म है। देखें जुमले को मिला के पढ़े, जो इल्म अल्लाह ताला ने आदम के अलावा कायनात में किसी मखलूक को नहीं सिखाया। सिखाया का क्या मतलब है, उसके लाशऊर में स्टोर नहीं किया। अब अल्लाह ताला फर तो ये सीखना सिखाना कुछ नहीं है, ये असल में अपने शऊर के दर्जों को तय करना, क्योंकि जखीरा तो ऑलरेडी पड़ा है। इसकी मिसाल मैंने अर्ज की थी एक दफा, कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव है, उसमें सॉफ्टवेयर लगे हुए, आपने वो ड्राइवर लगाकर कब कौन सा ऐप जो है वो खोला और उसको बरता और कितना उसमें मास्टर कर लिया, कितने आपने उसमें एक्सेल किया, कितना ये अब इसी नाम से वो एक प्रोग्राम भी है उनका एक्सेल। तो ये जो सलाहियतें हमारे अंदर जखीरा हैं, अल्लाह रब्बे करीम ने जो सलाहियतें हमारे अंदर जखीरा कर दी हुई हैं उन तक रसाई, सलाहियतें जखीरा की हैं, फिर उसका इल्म अलहदा से सिखा दिया कि इनको बरतना कैसे है। अगर हम अपने इनर सेल्फ में उतर कर उन सलाहियतों का वकूफ हासिल करके उस इल्म के मुताबिक उसको इस्तेमाल करेंगे तो बताइए हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे कि दूर हो जाएंगे। जाहिर है करीब हो गए, तो जब करीब होंगे तो फिर क्या काम करेंगे, अब अपनी मर्जी करेंगे, जाहिर है नहीं। फिर तो आपको पता है ना कि मुझे ये सलाहियतें किस काम के लिए दी गई हैं, अब वो काम करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने आदम को अपने इस्मा, यानी ब्रैकेट में साफ कर दिया कि सिफात का, यानी के बराह रास्त तर्ज फिक्र, यानी कायनाती शऊर का इल्म सिखाया। देखें कैसे तशरीह की है, वो मशहूर आयत कि मैंने आदम को अपने इस्मा का इल्म सिखाया, अल्लमल आदम आय कुल्लहा इस्मा, इस्मा कुल्लहा, मैंने आदम को अपने इस्मा यानी सिफात का, यानी बराह रास्त तर्ज फिक्र, यानी कायनाती शऊर का इल्म सिखा दिया। अब फरमाने बारी ताला रहनुमाई करते कि कायनात में इंसान वो हस्ती है जिसको अल्लाह ताला ने बराह रास्त तर्ज निगाह का इल्म दिया। कायनात तख्लीक करने के बाद अल्लाह ताला खुद कायनात के सामने आ गए और फरमाया मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा रब हूं। मफहूम यह है कि अल्लाह अपने देखने को, अल्लाह ने अपने देखने को देखा और कायनात ने अल्लाह के देखने को देखा। आपने ये तकरार नोट की, देखने को देखा, देखने को देखा। इस तकरार पे गौर करें, यही आज के चैप्टर का बुनियादी कानून है। यानी कि हमने यहाँ तक पढ़ा, बस यहीं पे रुक जाता हूँ।